भरपूर एकांत हो जरूर, या घर हो या बाहर हो या कहीं हो, हर हालत में बैठो याद में प्यार दिल में, धैर्य रखो अडिग रहो मौन साधो, याद में लीन बैठो हर दिन घंटे दो तीन, बीज को बोया प्यार से संजोया संकल्प से उगाया, विघ्न हटा अंकुर फूटा अहंकार टूटा, अंधेरे मिटेंगे फूल खिलेंगे फल मिलेंगे, ना हो निराश होगा प्रकाश तम का विनाश, याद में लीन बैठो हर दिन घंटे दो तीन, ताला है खुला आकाश वो नीला पंछी को मिला, ऊंची है उड़ान पुकार आसमान नूतन अभियान, शिव है क्षमा परवाना है पना वक्त ही थमा, जल जाना समर्पण होना एक हो जाना, याद में लीन बैठो हर दिन घंटे दो तीन, करो अब करो यही करो, रुकना नहीं थकना नहीं झुकना नहीं, दृढ़ता ही शक्ति दृढ़ता ही युक्ति दृढ़ता ही प्रगति दृढ़ता ही मुक्ति, याद में लीन बैठो हर दिन घंटे दो तीन,
अभी आते आते हम एक दादी के विषय में पढ़ रहे थे। दादी पुष्पा शांता, उनका लौकिक नाम गुड्डी था मेहतानी, जापान में थे, शादी हो गई, 5 संतान थी, फिर 38-39 सिंध हैदराबाद में आए, परिचय मिला ज्ञान का, बहुत वैराग नशा, और फिर बाद में मुंबई में आए कोलाबा में, और पूरा जीवन वहीं रहे। 5 संतान जो थी उनकी, उनके पति ने कहा तुम मेरे साथ चलो, पर उन्होंने कहा मुझे तो यहीं रहना है, वो पति उन बच्चों को भी कैद लेके चले गए। 5 बहनें थी, पूरा जीवन वहीं रहे कोलाबा में, बीमारियां थी, इलाज चालू था। 6 फरवरी 1983 में दादी एडमिट हुए, 7 फरवरी सुबह सुबह जो मोहिनी बहन थे उनके पास, उनको दादी ने बुलाया 7:45 सुबह और कहा कि सब हॉस्पिटल्स के स्टाफ और डॉक्टर्स को बुला लो, मैं 8:30 शरीर छोड़ने वाली हूँ। सारे डॉक्टर्स आ गए, स्टाफ आ गया हॉस्पिटल में, 8:25 में गीत बजा और बराबर 8:30 सुबह 7 फरवरी 1983 दादी ने अपने देह का त्याग किया। ऐसी घटना मानव इतिहास में बहुत कम है। जो महाभारत में वर्णन है इच्छा मृत्यु का, अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर देना, क्योंकि बाकी सब कुछ हमारे हाथ में है और मृत्यु की घड़ी कारण और स्थान, ये तीन चीजें मनुष्य के हाथ में नहीं है। एक भाई हॉस्पिटल में थे बहुत पहले, 30-40 साल से कहीं गए नहीं थे, आबू में ही रहे। शायद इच्छा ये थी कि शरीर छूटे तो आबू में छूटे, तीर्थ स्थान में। एक ही बार घर गए लौकिक में, वही भैंस वगैरह थी गांव की उनकी, उसको ले जा रहे थे। उस भैंस ने अपना सिंग मार दिया और वहीं डेथ हो गई, मृत्यु। तो ये जो घटना है दादी के जीवन की, में बहुत कुछ सूक्ष्म रहस्य भी समाये हुए हैं। दादी जब गई तो उनके पास केवल 8 साड़ियां और 1 सैंडल ही, ऐसा बड़ों से हमने सुना है। बहुत दिलदार महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज भी रहे, शिलू दीदी, वेदांति बहन, हेमलता बहन, ट्रिनिडाड वेदांति बहन, इन सबको पालना भी थी और सभी बड़ी बहनों ने उनके विषय में लिखा भी है। दादी की 5 संतान थी, उसमें से चौथी 3 लड़के 2 लड़कियां, चौथी जो बेटी थी सुपुत्री, उसकी शादी हुई और बाद में उसने संन्यास लिया माता विष्णुप्रिया नाम से। वो संन्यास जगत में जानी जाती है और जिस व्यक्ति से उनकी शादी हुई थी वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जमनादास, जामनदास मिर्चंदानी के 2 बेटे थे, एक खूबा और एक गुलाब। खूबा के साथ उनकी शादी हुई बेटी की और बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया माता विष्णुप्रिया के नाम से। ये जो खूबा थे इनका दादी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था, दोनों भाइयों का, और उन्होंने खूबा वाटुमल एंड गुलाब वाटुमल, ये 2 बेटे उनके पिता थे, जामनदास वाटुमल, जे वाटुमल ने भी 83 में ही शरीर छोड़ा और इन 2 बेटों ने मुख्य रूप से खूबा वाटुमल बाद में ग्लोबल हॉस्पिटल का फाउंडेशन, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल का नाम भी अपने पिता के नाम पर रखा। तो सारी कड़ियां ऐसे जुड़ती है। वो महिला जो टोकोयामा जापान में रहती थी, उसका भारत आना, ज्ञान को प्राप्त करना, मुंबई आना, बेटी की शादी होना, और शादी भी हुई और बाद में संन्यास ले लिया बेटी ने, पर जिससे हुई उसने ग्लोबल हॉस्पिटल बना दिया और नाम अपने पिता का रखा 91। तो इस ड्रामा में बहुत सी घटनाएं कैसे जुड़ती है, बड़ा सूक्ष्म रहस्य। कुछ भी जो हो रहा है जीवन में वह ऐसे ही नहीं हो रहा है, उसके पीछे अत्यंत सूक्ष्म रहस्य, शायद हमें नहीं पता, हम नहीं जान सकते, परंतु जितना जितना हम साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे, हम घटनाओं के पीछे जो घटनाएं हैं वो देख सकेंगे। इवेंट्स बिहाइंड इवेंट्स, सीक्रेट्स बिहाइंड सीक्रेट, रहस्य के नीचे छिपा हुआ रहस्य, उस रहस्यांतर को हम जान सकेंगे। मानवता इतिहास में यह पहली घटना है अगर देखा जाए तो। सन्यासियों के लिए ये बताया गया है, पर कोई गृहस्थी माता अपने डेथ की तारीख बताती है और टाइम बताती है कि मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ूंगी, को बुला लो, और एग्जैक्टली उसी टाइम देह का त्याग। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, ये क्या है? मृत्यु बड़ी एक रहस्यमय घटना है। बैठे बैठे चला जाता है, कोई महीनों वर्षों तक खाट पे पड़े रहते हैं, न जाते हैं न यहाँ रहते हैं। एक दादा हमारे पास एडमिट हुए थे अभी हॉस्पिटल में, उनकी उम्र लगभग 90 साल थी, माउंट के निवासी, बहुत पुराने, सारे माउंट वाले उनको जानते हैं। एक ही बेटा, वो भी मुंबई, उसकी भी उम्र 70 साल, उसको भी अपनी बीमारी है। तो जब कंडीशन सीरियस थी तो रिलेटिव्स को बुलाओ, वो टीचर थे, उनके सारे स्टूडेंट हैं आबू वाले। बेटे ने कहा अभी मैं थोड़ा बीमार हूँ, पर फिर कहा कि अभी तो एकदम लास्ट स्टेज है, आ जाओ, वेंटिलेटर पर है। तो वो बेटा भी बड़ा मुश्किल से आया, वो खुद भी बुजुर्ग, वो रहा 2-3 दिन, पर ये तो न जा रहे न ठीक हो रहे, बीच में सारे वाइटल स्टेबल, बीपी ठीक, पल्स ठीक, पर बेहोश, रिपोर्ट भी ठीक ठीक हो रहे। तो बेटा भी कहे कब तक रुकू, 2-3 दिन रुका, वो कहता है अब मुझे भी जाना होगा, वो चला गया। कुछ होता है तो मैं वापस आऊंगा। और कुछ दिन बीते तो जो दूसरे रिश्तेदार थे, मतलब उनके जान पहचान वाले, वो ओपीडी में आए और कहने लगे कुछ करो, लकड़ियां तैयार है। अब क्या करें और कैसे करें? तो मृत्यु भी बड़ी रहस्यमय घटना है। जब तक आत्मा अपने सारे हिसाब नहीं चुकतू करती है, नहीं जाती है। और जब हिसाब चुकतू हो गए तो फिर कितनी भी दवाइयां दो या कुछ भी करो, वो नहीं रुकेगी। कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई सकाश, कुछ नहीं, उसको जाना है, बस जाना है। तो आज के इस सत्र में हम 3 बातों की चर्चा करेंगे, जीवन के 3 सूत्र, 3A। सबसे पहला सूत्र है सजगता, जागरण, अवेयरनेस, 3A का। सबसे पहला A कौन सा है? सजगता, होश, होश में रहना, होश में जीना, होश में चलना, और इसका अभ्यास दिन भर करते रहे। चल रहे हैं, केवल चल रहे हैं, पूर्ण जागृति के साथ बैठे हैं अभी तो बैठे हैं, पूर्ण जागृति के साथ सुन रहे हैं तो केवल सुन रहे हैं, पूर्ण जागृति के साथ। सबसे बड़ा अभ्यास ही यही अभ्यास है। मैं आत्मा हूं कहो या ना कहो वो अलग, परंतु सजगता, अवेयरनेस, इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। देन मेडिटेशन पूरा इसी पर बेस्ड है। बौद्धिज्म का सबसे बड़ा जो सांप्रदाय निकला, जेन, आक्रमक और क्रांतिकारी, वो ना आत्मा को मानता है ना परमात्मा को मानता है, किसी को नहीं मानता, एक ही चीज को मानता है केवल, सजगता। पाप की एक ही परिभाषा है बेहोशी, और पुण्य की एक ही परिभाषा है जागृति। जो जो हम होश में करते हैं वो पुण्य है, जो जो हम बेहोशी में करते हैं वो पाप बन जाता है, और जो पूर्ण होश में है वो पाप कर ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है। और जो बेहोशी में है वो पुण्य कर ही नहीं सकता, चाहे पढ़ते रहे रटते रहे ये श्रीमत है ये श्रीमत है श्रीमत है श्रीमत है, ये खाना नहीं है ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, मन में चलता रहेगा ये विचार आना नहीं चाहिए ये विचार आना नहीं चाहिए, फिर भी वही करेगा क्योंकि केंद्र वही है। तो खेल होश और बेहोशी का है, जागरण और जागृति और बेहोशी का है। तो इसका अभ्यास, छोटा छोटा अभ्यास करते रहे, चल रहे संपूर्ण होश में चलना, तीन चीजों को याद रखते हुए, कौन चल रहा है व्यक्ति, कहाँ चल रहा है, किस समय चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, किस समय में चल रहा हूँ, तीनों प्रश्नों के बड़े गहरे उत्तर है। मैं यहाँ आत्मा से जुड़ जाएगा, स्वमान से जुड़ जाएगा, समय संगम युग से जुड़ जाएगा, स्थान केवल धरती नहीं, विश्व का जगत, विश्व का स्टेज। रात के 10 बजे है, 11 बजे है, कमरे में अकेला है व्यक्ति, रात हो रही है, बाकी सब सो गए, कमरे में कोई नहीं है, दरवाजा खिड़की बंद, अंधेरा, हाथ में मोबाइल। यहाँ हम क्या करते हैं, ये है जागरण, कि बेहोश हो जाते। तो जागरण का अभ्यास करना है, कैसे करेंगे जागरण का अभ्यास, केवल रटने से नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं जाग रहा हूं इस समय, अभी आंखें बंद करेंगे एक मिनट के लिए, और जो आवाजें सुनाई दे रही, पूर्ण जागृत अवस्था में उन आवाजों को सुने, चिड़िया की आवाजें, मनुष्यों की आवाजें, संगीत की आवाजें, एक भी आवाज छूटने ना पाए, तटस्थ भाव, साक्षी भाव, केवल सुनना है। एक व्यक्ति स्टेशन पर सोता है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, पर उसे डिस्टरबेंस नहीं होता है, क्यों? वो भी है। और यदि हमारे कमरे में बाजू वाला जोर जोर से खर्राटे लेता है तो हमें डिस्टरबेंस होता है, यदि योग में किसी का मोबाइल जोर से बजता है तो हमको डिस्टरबेंस होता है, क्यों? एक तो स्वीकार्य, दूसरा भीतर से संकल्प कि यहाँ की कोई भी चीज मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, चाहे ढोल ही बज रही हो पर हम आराम से सो सकते हैं। ये मन का रेजिस्टेंस है और सजगता का अभ्यास साक्षी भाव से जुड़ा है। कोई आता है, हमारी स्तुति करता है, हम तुरंत अटैच हो जाते। कोई आता है, निंदा करता है, हमारे मन में घृणा द्वेष उत्पन्न होता है, हम उससे दूर हो जाते। दोनों ही स्थितियों में हम प्रभावित हो गए, इसलिए अभ्यास करना है साक्षी होकर देखना। जैसे आकाश साक्षी है, वो बादल आते हैं चले जाते हैं, मुरलियों में आता है बातें जो है बादलों जैसी, आते ही है जाती है, विघ्न आते हैं जाते हैं, संडे की मुरली में भी बातें आती है जाती है, कल के वरदान में भी था, लीक भी ना रहे अगले दिन, जो आज दिन भर हुआ बीती सो बीती, अभ्यास करना है सजगता का, उसमें अभ्यास करना है साक्षी भाव का, और उसमें पहला अभ्यास है जो अभी हमने किया, बीच बीच में प्रकृति के सानिध्य में जाना, आंखें बंद करके बैठना और सारी आवाजों को सुनना और इंटरफियर नहीं करना, केवल सुनना है बस। सुन अनडिस्टर्ब्ड, ये छोटा अभ्यास है उस बड़े अभ्यास का। यहां आवाजें है, वहां क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब व्यक्तियों के बोल करते हैं और व्यवहार, दो ही चीजें, ठीक से व्यवहार नहीं करते तो हम डिस्टर्ब, अच्छा नहीं बोलते तो डिस्टर्ब, उनको भी साक्षी होकर देखना है। तो अभी हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, कंचा, अपने हाथ में एक मार्बल लेंगे जो हम देंगे और इस भाव से थोड़ी देर सब तरफ चक्कर लगाएंगे कि मेरे साथ ये कंचा नहीं है, स्वयं परमात्मा है मेरे साथ, मेरे हाथों में किसका हाथ है, स्वयं भगवान का, उस ज्योति बिंदु का, और इस संपूर्ण अवेयरनेस के साथ, संपूर्ण सजगता के साथ, एक पल भी इसको रिपीट नहीं करते रहना है, पर ये अवेयरनेस, ये जागृति, ये भाव कि मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है, बीच बीच में वो जो कंचा है उसको फील करना है हाथों में, अभी फील करेंगे आंखें बंद कर कर, हाथ में जस्ट फील करो उसको, सर्वशक्तिवान अपनी सर्वशक्तियों के साथ मेरे साथ। तो सभी उठेंगे अभी इस कैंपस में, एक 2-3 मिनट मौन में जितना धीरे हो सके उतना, चप्पल अगर निकाल दो तो बहुत अच्छा, शूज एंड नंगे पाओ, पाओ जमीन को लगनी चाहिए। स्टार्ट। सजगता, संपूर्ण जागरण, रैंडम, कहीं पर भी, एक ही जगह नहीं जाएंगे सभी, ऊपर नीचे, कहीं रुकना है कहीं बैठना है तो बैठ सकते हैं, पर चलते रहना है बीच बीच में। मेरे साथ स्वयं भगवान है, भगवान उवाच है, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है, इस समय भगवान स्वयं बंध गया है, तुम्हारे प्यार ने मुझको बंधायमान कर दिया है, तो बताओ कौन बड़ा, बांधने वाले या बंधन में आने वाले। ये मेरे जीवन की यात्रा है, बहुत धीरे स्पीड को कम कर देंगे, ये जीवन की यात्रा है, जीवन के प्रत्येक स्टेशन पर वो मेरे साथ ही था, है और रहेगा। जीवन की उन घटनाओं को याद करो बहुत बड़ा विघ्न अचानक आ गया और उसने मेरी मदद की, अत्यंत रिलैक्स, कैसे वो छत्र छाया बन गया था, मैं अकेला नहीं, स्वयं सृष्टि का नियंता, स्वयं इस ड्रामा का रचयिता, जानी जाननहार, अंतर्यामी, थॉट रीडर, गॉड, मेरे साथ। बीच बीच में पकड़ को मजबूत करेंगे हाथों की, एक एक कदम में वो मेरे साथ। अब धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आकर बैठे। तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सजगत जागरण अवेयरनेस माइंडफुलनेस थॉटफुलनेस। बेहोशी में कोई कर्म ना हो। महात्मा बुद्ध बैठे थे प्रवचन दे रहे थे, अचानक कोई मच्छर आया और उनका हाथ गया। उन्होंने हाथ ऐसे किया वो उड़ गया। थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने ऐसे हाथ किया जबकि अब मच्छर नहीं था। आनंद ने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा पहली बार जो किया था बेहोशी में किया था, इसलिए अब प्रैक्टिस के लिए होश से कर रहा हूं। चाहे आत्माभिमानी स्थिति रहे ना रहे पर अवेयरनेस हो और जब अवेयरनेस रहेगी तो अपने आप आत्माभिमानी स्थिति आ जाएगी। क्योंकि कौन अवेयर है? मैं। किस स्थान पर अवेयर है? इस स्थान पर मुझे सारा विश्व देख रहा है। इस अभ्यास को पुष्ट करना प्रैक्टिस। कोई भी खिलाड़ी बिना प्रैक्टिस के सफल नहीं होता। एक किताब है द पीक, उसमें लिखा है खिलाड़ियों के लिए किताब है कि जब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तब उस समय सोचो कि उस समय तुम्हारा जो दुश्मन है जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई है वो क्या कर रहा है। वो तो प्रैक्टिस कर रहा है और मैं टाइम वेस्ट। जब हम अपना समय मोबाइल इंटरनेट शॉर्ट्स रील्स उस समय सोचो कोई एक आत्मा तो होगी जो इस समय योग कर रही है और मैं क्या कर रहा हूं। यदि हमने अपना समय बर्बाद किया तो कोई हमें रिप्लेस कर देगा। जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, दिन रात लड़ते हैं अपने आप से। मेंटल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है ही नहीं, मेंटल बैरियर है। एक बॉडी बिल्डर है का नाम हम भूल रहे हैं, खालिब ऐसे कुछ नाम है, एक कुछ तो नाम है, बहुत अच्छा नाम है। उसके पिता ने उसको बचपन से ही ट्रेनिंग दी थी। जब वो केवल 7 वर्ष का था तब खबीब बॉडी बिल्डिंग से रिटायर हो गया अभी अभी। उसने 29 मैचेस खेले और 29 में भी वो फर्स्ट रहा और अपने दुश्मन को ऐसे हराया कि बाद में उस दुश्मन ने उसके साथ लड़ने की कभी हिम्मत नहीं की। अपोनेंट दुश्मन का हो या उसका जो भी है खबीब। तो उसके पिता ने जब वो 7 साल का था, एक जंगली भालू का बच्चा था, उसके साथ लड़ने के लिए इसको अकेले छोड़ दिया था। वहां से उसकी ट्रेनिंग चालू हुई। उसके पिता ने देखा था कि उस समय जो यूथ है वो इमोरेलिटी में अनैतिकता में जा रहे, तो उसके पिताजी ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देना चालू की और अपने बेटे को सबसे कड़ी ट्रेनिंग दी। ऐसी ट्रेनिंग शायद ही कोई दे। रग रग में उसके भर दिया कि कमजोरी के लिए तुम्हारे पास जगह ही नहीं है। 24 घंटे प्रैक्टिस। इसलिए वो ऐसा एक बॉडी बिल्डर बना कि जिसको कोई हरा ही नहीं सकता। पूरे उसके जीवन भर के कैरियर में दो ही करियर में दो ही बार हारा वो, बाकी मैक्सिमम मैच ही वॉज द विनर हबीब। तो अवेयरनेस ये सबसे पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है अटेंटिवनेस, अर्थात इस पल में जीना, नाउ लिविंग इन द प्रेजेंट, वर्तमान में जीना, अभी जीना, इस पल जीना। हमारा अधिकांश समय अतीत की हुई गलतियां, घटनाएं, उनका विश्लेषण समीक्षा करने में चला जाता है, या तो भविष्य में जो होने वाला है, जो हुआ नहीं है, अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो तो क्या, तो क्या, तो क्या। उस दादी पुष्पा शांता दादी के विषय में हम पढ़ रहे थे, दादी इतनी बीमारियां सब कुछ था, बीपी शुगर कैंसर, निश्चिंत हर्षित मुख चेहरा, और माँ थी लौकिक में, इसलिए वो पालना वाले संस्कार थे। वर्तमान में जीना, नाउ, इसको कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट, नाउ अभी। हम कुछ कर रहे हैं तो पूर्ण होश में, जागरण और सजगता से उसको करें, लिख रहे हैं पूर्ण होश से, योग कर रहे हैं तो फिर और कुछ नहीं कर रहे, यहाँ हम योग तो कर रहे हैं शरीर पर, मन तो कहीं कहीं जा रहा है, उसको प्रैक्टिस ही ऐसी देनी है। इसलिए गेम्स, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, इसका बड़ा रोल है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अपने आप कैसे होते हैं, माइंड शरीर पर एकाग्र होता है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, बस कल एग्जाम, एकाग्र होते हैं बहुत। हम एक लाइब्रेरी में गए थे पूना में, देखा इतनी बड़ी लाइब्रेरी, 6 मंजिल, हर मंजिल पर रात को 10 बजे थे उस समय, देखा दरवाजे खोलकर स्टूडेंट्स बैठे हुए, इतनी बड़ी बड़ी किताबें उनकी पढ़ रहे पूरी रात भर, क्योंकि एक लक्ष्य है, इसलिए वो इधर उधर नहीं भटक सकते मन से भी। तो लिविंग इन दिस मोमेंट का अभ्यास करना है, लिविंग इन दिस मोमेंट की प्रैक्टिस करनी है। अमृत वेला कर रहे तो केवल अमृत वेला कर, मुरली सुन रहे तो केवल सुन रहे, क्लास में बैठे तो सुन बस बैठे, अभी भट्टी में आए हैं तो 3 दिन को ऐसी एक साधना की भट्टी बना देनी है कि मोबाइल बंद, पूर्ण रूपे उस दुनिया से कट ऑफ, केवल यही हमको, उस भट्टी शब्द को भी हटा दो, वो भी एक तनाव पैदा करता है। 3 दिन हमें ईश्वरीय प्रेम में डूब जाना है, 3 दिन हमें इस ज्ञान मानसरोवर में डूब जाना है, 3 दिन हमें इस प्रकृति के सानिध्य में रहना है, प्रकृति से एक रूप होकर सदात्म जुड़ जाए एक रूप। और जब प्रकृति से हम जुड़ते हैं तो धीरे धीरे ऐसे अनुभव होगा कि प्रकृति और हम एक ही है, ये मैं ही हूं, मैं सर्वव्यापी हूं का अनुभव होगा, कुछ भी मुझसे भिन्न नहीं है, मैं जुड़ा हुआ हूं, इन पेड़ों में मैं हूं, यहां मैं हूं, वहां मैं हूं, तरफ तरफ एक ही चैतन्य है। जैसा मन शांत शांत और मौन मौन होते जाएगा, प्रकृति का मौन और हमारा मौन जुड़ेगा, और अपने आप उस परम मौन जो परमात्मा है उसकी यात्रा सहज होगी। तो दूसरा सूत्र है अटेंटिवनेस, दूसरा सूत्र है लिविंग इन दिस मोमेंट, दूसरा सूत्र है वर्तमान में जीना। ये जीवन जीने के 3 सूत्र है, और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ये। छोटे छोटे काम बट पूर्ण एकाग्रता से करने की का प्रयत्न करना, और एकाग्रता जबरदस्ती नहीं आती, हम आपको कहें एकाग्र हो जाओ, कैसे एकाग्र होंगे। स्टूडेंट्स को टीचर कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करो, और स्टूडेंट किस में लगा हुआ है, बाहर कोई चिड़िया गीत गा रही है उसका गीत सुनने में। टीचर कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो। वो कॉन्सेंट्रेटेड है पर एकाग्र कहाँ है, उधर जहाँ उसका रस है। तो एकाग्रता परिणाम है रस की, जहाँ रस है वहाँ अपने आप एकाग्रता आएगी, जहाँ रस ही नहीं है एकाग्रता कैसी। तो सबसे पहले तो ज्ञान में रस उत्पन्न करना, योग में रस उत्पन्न करना है, लंबा समय बैठने में रस उत्पन्न करना है, लिखने में रस उत्पन्न करना है, क्रिएटिव राइटिंग, यहाँ बैठे हो प्रकृति के विषय में कुछ लिखो, कविता लिखो, गीत लिखो, कुछ तो नवीन, लिविंग इन दिस मोमेंट। ये जब होगा तो हम बहाने नहीं देंगे। एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्पीकर है, उसने एक कहानी को कई बार अपनी स्पीचेस में सुनाया है। तीन कछुए पिकनिक के लिए जाते हैं, सैंडविच लेते हैं और शरबत लेते हैं, दो जाते हैं, तीसरा ज्वाइन करता है बीच में, वो कहता है मैं भी आऊँगा। तो तीन कछुए निकलते हैं पिकनिक मनाने के लिए, और जाते 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 बारिश चालू हो जाती है, तो एक चट्टान के नीचे वो तीन कछुए आश्रय लेते हैं। तो जो दो होते हैं वो तीसरे से कहते हैं हमने सैंडविच बनाया और शरबत बनाया, तुमने कुछ नहीं किया, अब तुम जाओ वापस और तीन छाते लेके आओ। वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं गया तो तुम लोग सैंडविच और ये शरबत पी लोगे। वो उसको समझाते हम नहीं पियेंगे। वो कहता है मुझे पता है तुम लोग पियोगे। बहुत बहस हो जाती है। फिर आखिरकार वो जो दो कछुए होते हैं अपनी खोल जो होती है ना उसकी सौगंध लेते हैं। ये बड़ी सौगंध है कछुए जगत में। वो कहते खोल की सौगंध, उस शेल की सौगंध की हम नहीं खाएंगे। तब कहीं वो जाके तैयार होता है और वो जाते हैं, चला जाता है। कुछ मिनट हो जाते हैं, वापस नहीं आता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं, वापस नहीं आता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, वो वापस नहीं आता है। 10 दिन गुजर जाते हैं, वो वापस नहीं आता है। तो ये जो दो कछुए हैं उसमें से एक कछुआ कहता है अब मुझे ऐसा लगता है जो सैंडविच हमने लाया था और जो शरबत लाया था वो पी लेना चाहिए। और तभी अचानक चट्टान के पीछे से आवाज आती है मुझे पता था तुम लोग खाओगे, इसीलिए मैं कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा। वो वहीं छिपा था। लेखक कहता है एक तो उसका विश्वास नहीं है और दूसरा अनिर्णय की अवस्था है। उसके मन में अभी भी द्वंद्व है, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। उसका मन अभी भी दो में डोल रहा है, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, टू बी और नॉट टू बी। सूत्र कहता है इस पल में जीना है, और जब संपूर्ण सजगता में हम कोई निर्णय लेते हैं तो फिर कोई पश्चाताप नहीं। बस ले लिया, ऑप्शन ए चुन लिया ना, ऑप्शन बी को अब छोड़ दो, वो कितना भी अच्छा हो, पर अब चुन हमने ए ऑप्शन लिया है, अब जो होगा तो देखेंगे, कूद जाओ उसमें। ऑप्शन ए ले लेते हैं और पश्चाताप करते रहते हैं, अरे बी बहुत अच्छा था, सब लोगों ने तो बी ले लिया, वो क्यों नहीं लिया, वो अच्छा था, ये जॉब से वो जॉब अच्छा था, ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट अच्छा था, ये सेवा से वो सेवा अच्छी थी, सेंटर ही अच्छा था घर से, या मधुबनी अच्छा था सेंटर से, या फुल टाइम जॉब, या हाफ टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब, करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, द्वंद्व। जो एक बार निर्णय ले लिया अब ले लिया, अब उसमें ही आगे बढ़ते जाओ। दिस मोमेंट, इन दिस मोमेंट लाइज द इटर्निटी, अंग्रेजी में कहते हैं इस पल में पूरी सदी छिपी हुई है। इसलिए एवरी मोमेंट को क्या बना देना है, अविस्मरणीय। बाबा कहते हैं तुम्हारा एक मिनट एक साल से भी बड़ा है, महत्वपूर्ण है। एक मिनट वेस्ट करते हो तो एक साल वेस्ट करते हो। तो सुबह सुबह उठते हैं तो हम सोचे कि हमारे हाथ में आज पूरा दिन है, और यहाँ आप जब हैं तो आपके पास पूरा तपस्या का एक दिन है, इसमें हम क्या करते हैं। आज सुबह के वरदान में, मुरली में, प्रश्न में कहा है तुम वनवाह में हो, लालच खाने का, पहनने का, दलदल है रावण का, मुझे क्या करना है, वही करते रहूं जो सारी दुनिया कर रही है, वही भोग विलास पूरा एनर्जी को खींच लेता है। तपस्या में मेहनत तो है पर हर छोटी जीत के बाद एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। जिसने आत्मा का स्वाद लिया है उसको फिर शरीर के स्वाद फीके लगने लगते, और वो होगा सुबह। और सुबह आप यहाँ इस वातावरण में हैं, अमृत वेला, प्रकृति के सानिध्य में करो तो और अच्छा, कोई नया अनुभव। हर अमृत वेला एक नया अनुभव हो, वही वही पुराना पुराना नहीं, वही वही पुरानी कमेंट्री नहीं, नया कुछ। तो दूसरा अभ्यास है लिविंग इन दिस मोमेंट, अटेंटिवनेस, ये है सेकेंड ई, इसका भी अभ्यास करना। तीसरा है जीवन का तीसरा सूत्र, अलोननेस, अकेले हो जाना। अध्यात्म का ये मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं है, एक्चुअली वास्तव में संगठित योग कुछ योग होता ही नहीं है, योग हमेशा व्यक्तिगत ही है। हाँ, संगठन में हम बैठते हैं, एक संगठित ऊर्जा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस वहाँ काम करती है, परंतु वास्तव में योग जो है वो अकेले का विषय है, एकांकी, शिव संगी योग। तो जितने आधार, जितने सपोर्ट्स, जितने बंधन हमारे ही अपने ही मन ने तैयार किए, उनको गिरा देना। वो कौन सी बाधा है? एक, वो कौन सी आदत है जो बाधा है? दूसरा, वो कौन सा व्यक्ति है जो बाधा है? और तीसरा, डिजिटल दुनिया की ऐसी कौन सी बात है जो बाधा है? ऐप, सोशल मीडिया, कोई सोशल मीडिया हैंडल, व्हाट, ये तीनों को गिरा देना। पहला, कोई व्यक्ति, दूसरा कोई आदत, और तीसरा डिजिटल जो माया है, जो दुनिया है, उसमें से कौन सी बात, इन तीन को गिरा देना पुरुषार्थ को आगे बढ़ा दे। तो ये मार्ग जो है वो कैसा है? अकेले का मार्ग। हमें लगता है इसको फ़ोन करूँ, उसको फ़ोन करूँ, इससे बुलाऊँ, उसको बुलाऊँ, इससे बात करूँ, उसको बात करूँ, वो दुख में है, उसका दुख दूर करूँ, वो टाइम गया। यहाँ हर एक को अपने आप का पुरुषार्थ करके आगे निकल जाना, किसी के लिए रुकना ही नहीं है। अगर हम रुके तो हम पीछे रह जाएंगे। वास्तव में मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, यह कमजोर मन की पुकार है मोटिवेशन। लोग कहते हैं ना, हमको मोटिवेशन ही नहीं है पुरुषार्थ करने का, क्यों करें? मुरली पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं है, चिंतन करने का मोटिवेशन ही नहीं है, क्लास सुनना तो एकदम फालतू लगता है, या अमृत वेला भी सब। मन इतना निगेटिव निगेटिव हो गया है सब देखकर, निगेटिव बातें देखकर, कि वो उत्साह, वो उमंग नष्ट हो गया। हम देख रहे कोई तो नहीं कर रहा है, हम भी क्यों करें? स्वयं को स्वयं ही उठाना है ऊपर। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम ही है, हमारे ही विचार, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा, हमारे ही इमोशंस जो प्रभावित हो गए हैं निगेटिविटी से। सबसे पहला काम तो अकेले हो जाना है, आप अपने आप को अलग कर देना इस भीड़ से। ये भीड़ अलग है, मैं अलग हूं। पुरुषार्थ अर्थात आंतरिक क्रांति, पुरुषार्थ अर्थात विद्रोह। जैसे कोई सत्ता के खिलाफ लोग एकजुट हो जाते हैं किसी नेता के खिलाफ और फिर क्रांति होती, सभी देशों में यही हुआ। आक्रांताएं आए, अत्याचार हुआ, फिर क्रांति की चिंगारी उठी। एक छोटे से गांव से, एक व्यक्ति से जो दावानल बन गई और सत्ताओं को उखाड़ कर फेंक दिया फिर एक दिन। इसे कहते हैं क्रांति, विप्लव, रिवॉल्ट, म्यूटिनी, रिवॉल्यूशन, विद्रोह। वैसे हम अगर अपने ही मन को देखें तो उसमें विदेशी आक्रांताएं आकर बैठ गए। ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। क्रोध, काम विकार, कामुक कल्पनाएं, ये फ्रेंडशिप्स, ये अटैचमेंट्स, लौकिक में अटैचमेंट, अलौकिक में नए संबंध, नए नाम, नए रिलेशनशिप्स, अफेयर्स, ये सब जो उधर था लौकिक में वो अलौकिक में खड़ा करती है। ये है विडंबना। एक व्यक्ति था जिसको इतना वैराग्य आया, इतना वैराग्य आया, महात्मा बुद्ध के शिविर को देखा, बुद्ध को देखा, लाखों सन्यासियों को उनके पीछे जाते देखा। एक होड़ लग गई थी उस समय बुद्ध के काल में सन्यास लेने की। उसको भी लगा मुझे सन्यास लेना है, मुझे सन्यास। माँ बाप ने बहुत समझाया, इतना मोह था, पर वो नहीं माना। आखिरकार वो निकल गया घर से, घर छोड़कर, और सन्यास्त हो गया। कुछ समय के बाद माँ बाप परेशान, बेटा कहाँ गया कहाँ गया। माँ कहती है अपने पति से और उसके पिता से कि जाओ ढूंढो। ढूंढने लगता है और फिर उसको दिखता है ये यहाँ आया है, सन्यासी बन गया है, तो आने को तैयार नहीं है। पिता कहता है मैं भी सन्यास ले लूँ। माँ आती है, माँ कहती है मैं थोड़ी ना रहूंगी, मुझे भी सन्यास लेना, मुझे भी वैराग आ गया है, संसार व्यर्थ है, संसार में कुछ रखा नहीं है, ये संसार की मोह माया हमें नहीं चाहिए। तो बेटा भी सन्यास ले लेता है, फिर माँ आ जाती है, माँ भी सन्यास ले लेती है, पिता भी सन्यास ले लेता है। अब आश्रम में तीनों साथ में ही रहते हैं, साथ में ही ध्यान करते हैं सुबह को, और साथ में ही प्रवचन भी सुनते हैं, और साथ में भोजन भी करते हैं, और साथ में भिक्षा मांगने जाते हैं। जो उधर था वो सब इधर खड़ा कर दिया, खाली वस्त्र बदल गए, और नाम अभी सन्यासी है तीनों का, बाकी काम वही चल रहा है जो उधर चालू था, वही मोह, वही आसक्ति। सन्यास लिया जाता ही नहीं है, ये शब्द ही गलत है। सन्यास लेना, सन्यास होता है, लेना क्या होता है, लेना अर्थात घृणा, इस संसार से सन्यास, मतलब तुमने किसी को छोड़ा है, ऐसा सन्यासी नहीं है ये। सन्यास प्रकट होता है, अवतरित होता है, घटता है अपने आप। किसी चीज के लिए घृणा नहीं, अपने आप ही वो चीज अभी हमारे लिए व्यर्थ हो गई। वो सामने भी रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ शुरुआत में साधना तो करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा विवेक से, करना है नहीं करना। तो जो भीड़ मन में है, दोस्तों की, साथियों की, मित्रों की, संबंधियों की, रिश्तेदारों की, सबका अपना अपना पार्ट है। जब उनका स्टेशन आएगा उतर जाएंगे, ट्रेन चालू है, हम कितना भी रोके मत उतरो, हमारे साथ अहमदाबाद तक चलो, वो कहेगा मुझे पालनपुर में उतरना है, मैं थोड़ी रुकूंगा। या हम कहे मुझे पालनपुर में उतरा है, तुम भी मेरे साथ उतरो, वो कहेगा ना मुझे आगे जाना है। तो जीवन की यात्रा में कोविड काल में एक सेंटर की समर्पित बहन है, उसके पिताजी पहले एडमिट हुए, शरीर छोड़ दिया। माताजी डिप्रेशन में चली गई, दुख में चली गई, उसका भी एक हफ्ते के अंदर पॉजिटिव आ गया। फिर वो एडमिट हो गई और एक हफ्ते के अंदर माताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। वो सेंटर की बहन हमसे पूछने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब शॉक हो गया है, पूरा माइंड सुन हो गया है, क्या मैं सोचूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि उनके प्रति मोह था, पर वो चुप हो गई, डिप्रेशन में चली गई, एक समझ नहीं आ रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, मोह तो था पर बड़ा गहरा, या फिर चिंतन नहीं किया था इस सब्जेक्ट के विषय में, इसलिए सभी परिस्थितियों के विषय में त्रिकालदर्शी अर्थात हमें पता हो, ये भी होगा, वो भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, हम कितने तैयार हैं। तो ये तीन सूत्र है। सबसे पहला अवेयरनेस, फर्स्ट ए जागरण, फर्स्ट ए माइंडफुलनेस, फर्स्ट ए होश। दूसरा अटेंटिवनेस अर्थात इस पल में जीना, नाउ। और तीसरा अलोननेस, जितना हम समझते ये मेरा वो मेरा, ये मेरा वो मेरा, जितना ये मेरा वो मेरा है उतना मैं आत्मा हूं कम हो जाता है, ये बढ़ता है तो ये घटता है, इसलिए इन तीनों सूत्रों को अपने जीवन में धीरे 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 लाना है। तो फिर से स्थिर होके बैठेंगे और अभी एक नया योग का प्रयोग करेंगे, अपने पैर को जमीन को लगा देंगे, आंखें बंद, डायरी पेन पेंसिल सब नीचे रख दो, तटस्थ और साक्षी भाव का अभ्यास। वो दे दीजिए वापस। इसमें हम दो अभ्यास करेंगे अभी, एक तटस्थ भाव से अपने श्वास को देखने का, मैं आत्मा यह शरीर, आत्मा और शरीर के बीच और एक चीज है प्राण, श्वास, श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है, और ये जो श्वास है इसका संबंध हमारे अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से। जैसे ही क्रोध आता है श्वास की गति बदलती है, जैसे वासना जगती है श्वास की गति बदलती है, जैसे ही लोभ जागता है ब्रीदिंग चेंज हो जाता है। यदि हम इस ब्रेथ को अगर साक्षी होकर देखें तो श्वास को देखते देखते हम अपने विचारों को देख पाएंगे, ये पहला अभ्यास है। और दूसरा फिर हम अभ्यास करेंगे, 2400 घंटे हमारे शरीर में कोई ना कोई सेंसेशन उत्पन्न होते रहता है, या खुजली है, या दर्द है, या धड़कन, या कुछ कंपन हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कुछ तो हो रहा है पूरे शरीर में 2400 घंटे कुछ ना कुछ हो रहा है। यदि हम इस कंपन को, इस प्रकंपन को, इस सेंसेशन को, इस संवेदना को साक्षी होकर देखने का अभ्यास करें और पूरे बॉडी को स्कैन करें ऊपर से लेकर नीचे तक, तो एक अवस्था आएगी, कुछ रियलाइजेशंस होंगे। पहला रियलाइजेशन ये होगा कि ये जो संवेदना है, सेंसेशन है, ये परमानेंट नहीं रहता है। अभी यहाँ दर्द हो रहा है, इसको इसका इसका इपिसेंटर ढूंढो, कहाँ दर्द हो रहा है। जब मैं कहता हूँ पैरों में दर्द है, एग्जैक्टली वेयर, कहाँ, उसको मन को लेके जाना है वहाँ पर और पिन पॉइंट करना है उस इपिसेंटर को, और वो दर्द फिर कितनी जगह फैल रहा है उस फैलाव को देखना है कहाँ कहाँ जा रहा है। जब हम देखते रहेंगे तो ये विलीन हो जाएगा, आगे चला जाएगा, बदल जाएगा। तो पहला स्वभाव उनका है कि वो बदलते रहता है जो भी संवेदना है। दूसरा, पूरे शरीर में उत्पन्न होती ही रहती है और हमें पता ही नहीं रहता, और इन संवेदनाओं का संबंध सबकॉन्शियस माइंड से है, रात को हमें मच्छर अगर काटता है, अपने आप हम इतनी गहरी नींद में होने के बाद में भी ऐसा उंगली हाथ जाता है, क्यों? 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 क्योंकि ये दर्द का कनेक्शन कहाँ है? अवचेतन मन से। जीवन भर व्यक्ति ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेता है, फिर भी काम से नहीं छूट पाता है, क्यों? क्योंकि काम का सुख उसने जो अनुभव किया था, उसका कनेक्शन सीधा अवचेतन से है, वो संवेदना थी, उसकी स्मृति उसके पास है, उसकी स्मृति उसके पास है, इसलिए वो स्मृति जागृत हो जाती है और ये सारी प्रतिज्ञाएं फेल हो जाती है, क्योंकि वो संवेदना है, वो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। तो सबकॉन्शियस सेंसेशंस का कनेक्शन किससे है? सबकॉन्शियस माइंड से। तीसरा, यदि इन संवेदनाओं को हम देखने लगेंगे तो हम अपने अवचेतन को देख सकते हैं, नहीं तो ये अवचेतन को देखना बहुत मुश्किल है। सारा दिन कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, केवल सुबह खुलता है, रात को सोते समय खुलता है, और योग की गहरी अवस्थाओं में सबकॉन्शियस खुलता है। चौथा, बॉडी को देखते समय वो खुलता है। हम शरीर को देखते देखते अचेतन को देखने लगेंगे, श्वास को देखते देखते अचेतन। अगर ये दो प्रारंभिक अभ्यास कर लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, मैं आत्मा हूं की शुरुआत यहां से है। सीधा हम आके भाग के आते हैं, मैं आत्मा हूं, वहां से चालू करते हैं, पर वो आत्मा में स्थित नहीं होनी हो नहीं पाते, क्योंकि कुछ तो मिसिंग लिंक है। तो अभी सभी स्थिर बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे थोड़ी देर, हाथ कैसे भी रखना है, जैसे जिसको रखना है, परंतु जो एक बार रख दिए उनको हिलाना नहीं है, फिर अगले 10 मिनट तक ऐसे रख दिए तो ऐसे, ऐसे रख दिए तो ऐसे, उंगली भी ना हिले, फिर जैसे रखे हैं, जैसे पाँव रखे हैं, जैसे हाथ रखे हैं, किसी भी एक सुखदाई मुद्रा में बैठ जाना है, फिर आंखें बंद, सबसे पहले प्रकृति में जो आवाजें हैं उनको सुनेंगे। अब धीरे धीरे सारा ध्यान श्वास की तरफ, श्वास आ रहा है, जा रहा है, दाई नासिका से बाई नासिका से, उसे नियंत्रित नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, केवल तटस्थ भाव से देखना है। आ रहा है, जा रहा है, फील करना है, जो अंदर ठंडक महसूस होती है उसको। एक दो श्वास तेज ले सकते हैं ताकि अनुभव हो कि श्वास है और आ रहा है और जा रहा है। पूर्ण जानकारी, श्वासों पर पहरा लगा देंगे, श्वास आ रहा है, जा रहा है, जैसा भी आ रहा है, छोटा बड़ा, गहरा उथला, तेज मंद, आ रहा है, जा रहा है, श्वास धीरे धीरे शांत हो रहा है, हमारा अचेतन मन उससे जुड़ा है, मन भी शांत हो रहा है। अब धीरे धीरे मन को पूरे शरीर पर घुमाएंगे, शुरुआत करेंगे सिर से, पूरे चेहरे को देखेंगे, किस प्रकार के सेंसेशंस चेहरे पर है, तनाव, दुखाव, दबाव, केवल देखना है, गर्दन, कपड़ों का स्पर्श, हवा का स्पर्श फील करेंगे, राइट साइड, दाया कंधा, दाई कोहनी, दाया हाथ कलई, उंगलिया पूर्ण दाया हाथ, कहाँ क्या हो रहा है फील करेंगे, थोड़ी देर देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इंच इंच स्कैन करेंगे। अब बाया हाथ टुकड़ों टुकड़ों में देखेंगे क्या हो रहा है। इस प्रकार की संवेदनाएं। अब छाती की ओर धड़कन को देखेंगे, फील करेंगे, दाई छाती बाई छाती, पेट पीठ कमर, दाया पैर ऊपर से लेकर नीचे तक, जांघ घुटना पिंडली टखना उंगलिया तलवा, बाया पैर ऊपर से नीचे तक, देखेंगे किस प्रकार की संवेदनाएं, सुखद है दुखद है या न्यूट्रल, जो भी है देखेंगे, रुकेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। स्वीप एंड स्कैन, पूरे बॉडी की स्कैनिंग करनी है फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक, सेकंड राउंड, चेहरा गर्दन दोनों हाथ छाती एक साथ, दोनों हाथ पैर पेट एक साथ, दोनों पैर एक साथ, अपने आप अशरीरी अवस्था आ चुकी है, पूरे शरीर में केवल तरंगे ही तरंगे। फिर से एक बार थर्ड टाइम ऊपर से नीचे तक, तरंगे ही तरंगे, वेव्स एंड वेवलेट्स, पूरे शरीर में जैसे केवल कंपन है, शरीर का घनत्व शरीर का स्थूल बना विघटित हो रहा है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है, स्थूलता जैसे कहीं है ही नहीं। चौथी बार ऊपर से नीचे तक शरीर को स्कैन करेंगे, अब केवल तरंगे ही तरंगे हैं, धारा प्रवाह। सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य, मैं तेजस्वी ज्योतिर्मयी आत्मा हूं, सारी चेतना को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। मुझ आत्मा से सारे शरीर में प्रकाश फैल रहा है, मैं दिव्य ऊर्जा हूं, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेममयी, शक्तिशाली, सच्चित आनंद स्वरूप चेतना हूं, पूर्ण शरीरीपन, स्वयं को अनुभव करेंगे ग्लोब के ऊपर और नीचे धरती पर। दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, पतित आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं, भटकती आत्माएं, सभी आत्माओं को सुख की शांति की आनंद की किरणें फैलाएंगे। प्रकृति के पांचों तत्व शुद्ध हो रहे हैं, आकाश हवा धरती अग्नि जल, और विश्व की सभी आत्माओं को सुख शांति का अनुभव। मैं फरिश्ता हूं, तभी आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और एक सर्कल बनाएंगे, गोल, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, चेयर्स बीच में रह जाएगी, उधर देखते हुए एक सिंगल सर्कल। अशरीरी अवस्था कायम, अव्यक्त स्थिति कायम, एक सिंगल सर्कल, वन सिंगल सर्कल, वन सिंगल सर्कल। थोड़ा नजदीक नजदीक, बहुत दूर दूर भी नहीं, आंखें बंद, मौन, अशरीरीपन, विदेही अवस्था, हल्कापन, निर्भार, मैं, दिव्य ऊर्जा। मेरे दोनों हाथों से पवित्र ऊर्जा इन दो आत्माओं को जा रही और इन दो आत्माओं की पवित्रता की किरणें, ऊर्जा, शक्ति मुझ में आ रही। पवित्रता का करंट शरीर से दौड़ रहा है, शरीर में दौड़ रहा है। एक सिंगल प्यूरिटी सर्किट। यहाँ उपस्थित सभी आत्माओं का योग बल, पुण्य बल, तपोबल, पवित्रता का बल मुझ में समा रहा है। हाथ छोड़ देंगे और अनुभव करो खड़े खड़े। मेरे जीवन के जितने बोझ हैं, ये एक यज्ञ कुंड है, मैं सारे बोझ बीच में डाल दे रहा हूं। जो चिंता है, भय, पश्चाताप, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ, नेगेटिविटी, बीमारियां, इस यज्ञ कुंड के बीच में मैं अर्पित कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए सभी नीचे जमीन पर लेट जाएंगे, पीठ के बल, रिलैक्स, शवासन। आकाश की तरफ देखेंगे, दूर दूर, जितना दूर हो सके, अंग से अंग न लगे। आकाश की तरफ देखेंगे, विराट आकाश। हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हाथों के तलवे आकाश की ओर, दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, आंखें बंद, निर्भार, निर्बोध, मैं, डबल लाइट। फिर से एक बार बॉडी स्कैनिंग करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, चेहरा, गर्दन, दोनों हाथ, छाती, पेट, पैर, पीठ, कमर। फिर से श्वासों को देखेंगे, श्वास आ रहा है, जा रहा है। फिर से चित्त को भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे, मैं दिव्य आत्मा, आत्मा श्वास शरीर, शरीर श्वास आत्मा। मेरी सारी थकान मिट गई, जैसे शरीर मर चुका है, मृत्यु का अनुभव, डेड बॉडी। धीरे धीरे पैर की हलचल करेंगे, थोड़ी सी हाथों को हिलाएंगे और बहुत धीरे से उठकर वापस चेयर पर बैठ जाएंगे। बहुत स्लोली अशरीरी अवस्था कायम। एक बार एनर्जी स्नान हाथों को और फिर ऊपर से लेके तो पैरों तक, नीचे तक 3 times हाथों को दोनों को रब करेंगे, ऊपर से लेके तो नीचे तक पैरों तक लेके जाएंगे। एनर्जी बाथ, एनर्जी शावर, फिर से एक बार हाथों को रब करेंगे, ऊपर से लेके तो पैरों के तलवे तक, नीचे तक 3 times एनर्जी शावर। सभी बैठ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
प्यार हो भरपूर, एकांत हो जरूर, या घर हो या बाहर हो या कहीं हो, हर हालत में बैठो याद में प्यार दिल में, धैर्य रखो अडिग रहो मौन साधो, याद में लीन बैठो हर दिन को बोया, प्यार से संजोया, संकल्प से उगाया, विघ्न हटा अंकुर फूटा, अहंकार टूटा, अंधेरे मिटेंगे, फूल खिलेंगे, फल मिलेंगे, ना हो निराश, होगा प्रकाश, गम का विनाश, याद में लीन बैठो हर दिन घंटे दो। आकाश वो नीला पंछी को मिला, पूछी है उड़ान, पुकार आसमान नूतन अभियान, शिव है क्षमा, परवाना है फना, वक्त ये थमा, जल जाना, समर्पण होना, एक हो जाना, याद में लीन बैठो हर दिन घंटे दो तीन, करो अब करो यही करो, रुकना नहीं, थकना नहीं, झुकना नहीं, दृढ़ता ही शक्ति, दृढ़ता ही युक्ति, दृढ़ता ही प्रगति, दृढ़ता ही मुक्ति।